Je t'ai dit. क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
प्रिय श्रोताओं नमस्कार, मैं डॉक्टर देवभरत सिरतन क्षितिज कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से प्रस्तुत किया जाता है, जिनके महासचिव हैं प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के लिए जो विषय चुना गया है वो है हिंदी और नाटक। इस विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हैं श्री राजेश्वर सितोहल जी। श्री राजेश्वर सितोहल जी के बारे में दो शब्द। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस MGI से हिंदी में BA की डिग्री हासिल की। आप दो कंपनियों के डायरेक्टर हैं। आप वाक्वा रंगभूमि कला मंदिर थिएटर ग्रुप के अध्यक्ष भी हैं। छोटी उम्र से ही आपने नाटक में अभिनय शुरू किया था। मॉरिशस के कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा हिंदी, भोजपुरी, क्रियोल और अंग्रेजी भाषाओं में जो नाटक प्रतियोगिता की जाती है आप उसमें भाग लेते रहे हैं। आप अनेक पुरस्कार व अवार्ड के विजेता हैं। साल 2014 में आपको नेशनल ड्रामा फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर से नवाजा गया। MGI स्ट्रीट प्ले कंपटीशन 2017 में आपको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। हिंदी ड्रामा फेस्टिवल 2018 में आपको बेस्ट डायरेक्टर का खिताब प्राप्त हुआ। साल 2020 में आपको MFDC द्वारा रोड सेफ्टी कंपटीशन के लिए बेस्ट मूवी का खिताब प्राप्त हुआ। सूची काफ़ी लंबी है। इसके अलावा आपको अनेक अवार्ड भी प्राप्त हुए। राजेश्वर सितोहल जी नमस्कार।
नमस्कार गुरुजी।
स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। राजेश्वर जी, नाटक के क्षेत्र में आपने काफ़ी नाम कमाया है। आप एक परिचित व्यक्ति हैं। कृपया हमें बताइए कि आप कब से नाटक में अभिनय करते हैं।
सर्वप्रथम धन्यवाद गुरुजी कि आपने मुझे यह निमंत्रण दिया और सभी प्रोग्राम सुनने वालों को मेरा प्रणाम। 5 साल की उम्र से मैं नाटक करता हूँ। अपने पिताजी स्वर्गीय गोकर्ण सितोहल जी जो नाटक करते थे, उनकी टोली वाक्वा रंगभूमि कला मंदिर के साथ मैंने राष्ट्रीय नाटक प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू किया। उनके देहांत के बाद हम तीनों भाई ने ग्रुप की भागदौड़ संभाली और इसी कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम हिंदी, भोजपुरी, क्रियोल और अंग्रेज़ी में हर साल नाटक प्रस्तुत करते हैं और आज हमारे संस्थान से लगभग 200 से अधिक कलाकार जुड़े हुए हैं।
जी, तो आप किस स्थिति में नाटक से जुड़ गए?
नाटक से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कह सकता हूँ दादाजी, पिताजी और हम तीन भाई, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो नाटक कर रही हैं। तो ये घर में ही है, माहौल ही ऐसा था। पिताजी राजेश खन्ना के बहुत बड़े फैन थे। अच्छा। वे नाटक करते थे।
कहाँ पर करते थे, कहाँ पर पेश करते थे?
पहले दादाजी जब पूर्वज के ज़माने में नाटक नहीं होती थी पर गांव-गांव में रामायण होती थी। अच्छा। दादाजी वहाँ नाटक करते थे। उसके बाद पिताजी हिंदी के अध्यापक थे तो वे अपने दोस्तों के साथ एक छोटी टोली बनाकर गांव-गांव में नाटक प्रस्तुत करते थे और उनके समय में मिनिस्ट्री की ओर से नाटक प्रतियोगिता शुरू हुआ तो उन्होंने एक टोली बनाई और वहां से उनका कारवां शुरू हुआ और इसी कारवां को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
जी, आप नाटक में अभिनय के साथ साथ मंचन भी करते हैं, निर्देशन भी करते हैं, इस पर कुछ जानकारी दीजिए।
जी हाँ, बचपन से अभिनय करने का बहुत शौक था। उसके बाद जब 2014 में कुछ पुरस्कार मिले तो मेरे भाइयों ने मुझ में यह विश्वास रखा कि मैं अभिनिर्देशन के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मुझे यह अवसर दिया और मेरा पहला नाटक जो मैंने खुद निर्देशक के रूप में किया था वो है कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। अच्छा। मैंने अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया था और उसमें मुझे सेकंड बेस्ट डायरेक्टर पुरस्कार मिला था। तो इसी से प्रेरणा लेकर फिर मैं हिंदी भाषा में लगातार 3 साल के लिए अभी बेस्ट डायरेक्टर रहा हूँ, और मैंने अपने दोस्तों को जो हिंदी करते थे या अपने अध्यापकों को लेक्चरों को नाटक से इंट्रोड्यूस किया, उनके साथ हमने बहुत से नाटक किए MGI में, मिनिस्ट्री में या गला शोज में, तो ऐसे ही लोग जुड़ते रहे और हम नाटक करते रहे।
जी, नाटक और हिंदी का जो संबंध है उस पर कुछ खुलासा दीजिए।
जैसे हम सब जानते हैं भारतेंदु
जी,
जिन्होंने हम कह सकते हैं नाटक के लेखन में उनका बहुत बड़ा योगदान है शुरुआत में, तो इसी से प्रेरणा लेकर बहुत से नाटककारों ने नाटक लिखना शुरू किया। आज हम कह सकते हैं नाटक के द्वारा हम मंच या समाज में लोगों को एक बेहतर राह, जो समस्याएं हो रही हैं उनके समाधान दिखा सकते हैं, और भाषा ये बच्चों के लिए नाटक एक जरिया है कि वे भाषा से जुड़ सके। वे नाटक करेंगे और नाटक पढ़ेंगे या देखेंगे, वे भाषा सीखेंगे उससे।
जी, तो जैसे कि हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए अर्थात उसका विकास लाने के लिए साहित्य की अनेक विधाएँ हैं, कहानी है, उपन्यास है, कविता है। कृपया श्रोताओं को बताइए कि आपने विशेष विषय नाटक को क्यों चुना।
हम कहानी पढ़ते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर आप जब कुछ विजुअली देखते हैं, जैसे नाटक ये विजुअल हैं, आप लोगों के को हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, अलग भाव ला सकते हैं, तो विजुअली इट्स मोर इम्पैक्टफुल।
सामने दिखता है,
सामने दिखता है, लोगों को दिखता है क्या हो रहा है, और संदेश एक कनेक्शन होता है। तो जब लोग नाटक देखते हैं तो अभिनेता और श्रोता दोनों कनेक्ट होते हैं, संदेश बहुत अच्छे से चला जाता है क्योंकि ये विजुअल होता है, और आप जो भी दिखाना चाहते हैं ये दिमाग में ज़्यादा रहता है, जैसे कि आप सुनेंगे, पर जो आप देखेंगे वो बहुत याद रहता है।
एक नाटक के मंचन के लिए पात्रों की ज़रूरत पड़ती है, आप अपने पात्रों को किस रूप में तैयार करते हैं।
पहले तो हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट कैसा है
जी।
जब एक स्क्रिप्ट मिल जाता है तो हम उस पर काम शुरू कर देते हैं। हमें पता है कि कौन सा कलाकार इस अभिनय में जाएगा, या अगर कुछ कठिनाई होती है तो पहले हम तीन बेसिक से शुरू करते हैं
जी।
वो है मानसिक बल, शारीरिक बल और वोकल। मानसिक क्योंकि उनको डायलॉग याद रखना पड़ता है, दूसरा शारीरिक ये इसलिए क्योंकि स्टेज पर जब हम अभिनय करते हैं डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स और जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बॉडी भी स्फुर्त होनी चाहिए कि हम नाटक कर पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, या आप नाटक खेल रहे हैं, लचक आ गई तो ये समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और तीसरा है वॉइस, लोगों को आपकी आवाज़ सुनना चाहिए, जो आप कह रहे हैं दर्शकों से उन तक आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। अगर आप अलग अलग अभिनय कर रहे हैं, और नाटक में ये बहुत अच्छी बात है कि आप कोई भी किरदार निभा सकते हैं, जैसे कि पुलिस, डॉक्टर, जो भी किरदार हैं आप उसे निभा सकते हैं। उसमें अगर आपको आवाज़ बदलनी है तो उस पर ज़्यादा काम होता है कि अगर भारी आवाज़ चाहिए या लड़की की जी, तो इस पर ज़्यादा काम होता है। और पहले तो हम इससे शुरू करते हैं, फिर रिहर्सल होती हैं, हम उनको एक्टिंग देते हैं, एंट्री और एग्जिट। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, दो व्यक्ति का काम नहीं है, उसमें टेक्निकल टीम भी आती है, क्योंकि जब वो म्यूजिक देगा, लाइट्स आएगी, तब एक्टर बोल पाएगा, दूसरे कलाकारों की एंट्री, ये सब एक ग्रुप वर्क कह सकते हैं कि होता है।
यानी कि अभिनय के अलावा आवाज़ ज़रूरी है,
बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि नाटक आवाज़ के बिना नाटक नहीं हो सकती है, हो सकती है एक्टिंग वाइज, पर ये तीन बेसिक जो हम अभी के लिए अपने कलाकारों से शुरू कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आवाज़ के बिना सिर्फ एक्टिंग वाइज, ये भी है नाटक, ऐसे कई नाटक हुए हैं।
और हम ये भी देखते हैं कि नाटक जब देखते हैं तो जो पात्र होते हैं उन लोगों का जो मूवमेंट देखा जाता है, कहाँ पर कब आना चाहिए, किस रूप में आना चाहिए, ये सब इसकी तैयारी भी होनी चाहिए।
यही अगर इस पात्र इस बात को देखेंगे तो ये मानसिक बल पर आता है कि आपको याद रखना होगा कि कब दूसरे पात्र की एंट्री होगी या एग्जिट या कौन सा डायलॉग कब बताना है। ये मानसिक, जैसे मैंने कहना बॉडी वॉइस एंड माइंड, ये इन तीनों में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है।
ठीक, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि जो पात्र होते हैं अगर हिंदी में नाटक है तो उसे हिंदी आनी चाहिए?
ये ज़रूरी नहीं है। मेरे संस्था में जो कलाकार हैं, भोजपुरी की बात करेंगे, कुछ तो भोजपुरी नहीं जानते, फिर भी पुरस्कार जीतते हैं क्योंकि वे रट कर आते हैं। हिंदी भी ऐसा है, बहुत सरल भाषा है, कोई भी बोल सकता है। तो सिर्फ हम देखते हैं अगर भाषा उनकी कमजोरी है तो हम उसी भाषा को उनका बल बना देती है। अगर वे हिंदी जैसे टूटा फूटा बात कर रही है तो जैसे वो हकला रहा है तो वैसे वो हिंदी बोल सकता है, उस पात्र को भी उसके हिसाब से हम तैयार करती हैं।
तो उनके अनुकूल आप उसको उसकी जो आवाज को ढालना पड़ता है।
जी हाँ।
और आपकी खुद की कंपनी है, उसके बारे में बताइए कि इस कंपनी आप लोग करते क्या है?
पहला है ASO फोटो स्टूडियो, ये डिजिटल फोटो प्रिंटिंग का एक कंपनी है जो हम बड़े फॉर्मेट्स में जो प्रिंटिंग होती है, बैनर्स, फोटो, कैनवास, ये सब करते हैं। और दूसरा है ASO प्रोडक्शन, ये हमारा मीडिया और प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पर हमारा खुद का स्टूडियो है ग्रीन स्क्रीन का, हम ग्राफिक्स करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, शॉर्ट फिल्म्स जो समाज में क्या हो रहा है शॉर्ट फिल्म्स करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। अच्छा। और ग्राफिक्स लोगो के सब काम हम करते हैं।
हिंदी में नाटक को लेकर युवकों का कोई आप संदेश देना चाहेंगे?
आज टिकटॉक के माध्यम से एक्टिंग बहुत प्रचलित हो गई है तो बहुत लोग नाटक देखना बहुत पसंद करते हैं पर वे मंच ढूंढते हैं। अच्छा। मैं उनसे यही कहूँगा कि संस्थानों से जुड़िए, अगर एक्टिंग करना है क्यों ना उसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालिए। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उन साधनों का उपयोग करके आप नाटक कीजिए, उसको फेसबुक पर डालिए, लोगों को देखने को मिलेगा। और युवाओं आपको हिचकिचाना नहीं है, अगर नाटक करना है तो जाइए क्योंकि ये आपको बहुत से समाज के जैसे खतरनाक बुराइयों से ये बचाएगा।
और ये बात है कि लोगों का मनोरंजन भी हो जाता है।
जी।
क्या आपके देखने में युवा लोग इसकी ओर आएंगे?
अभी के लिए अगर देखें फिल्म और ड्रामा तो ज़रा लोग फिल्म को चुन रहे हैं क्योंकि स्कोप बहुत है। मैं नहीं कहूँगा कि नाटक में आज ना स्कोप नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं कि युवकों का ध्यान ज़्यादा फिल्म विजुअल मीडिया की ओर ज़्यादा केंद्रित हो रहा है। तो इस पर काम करना होगा, हो रहा है पर काम धीरे धीरे, ये एक लंबा प्रोसेस है जो हो सकेगा।
अच्छा। तो प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा क्षितिज कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि आज आप राजेश्वर सितवाल जी को सुन रहे थे। MBC के हमारे सहयोगी श्री रामा जी को धन्यवाद देते हैं और आप श्रोताओं को भी धन्यवाद है और विशेष धन्यवाद श्री राजेश्वर सितवाल जी को जाता है।
धन्यवाद।
मैं डॉक्टर देवराज रतन आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार।
एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।